ओम शांति। इस बार की मुरली में बाबा ने शुरू शुरू से हम बच्चों के खजानों का जिक्र किया। ईश्वर के सारे खजाने हम बच्चों के हैं, हमारा उन पर अधिकार है, लेकिन कई बार इन खजानों की अनुभूति कुछ हद तक कम हो जाती है। कौन से ये ईश्वरीय खजाने हैं और कैसे इनकी अनुभूति की जाए, आइए इस विषय पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय उर्मिला बहन जी, हम सभी आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है। 1981 में आपने ज्ञान प्राप्त किया और 1985 में अपनी जीवन को ईश्वरी सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। अनेक अभियानों के द्वारा आपने भारत भर में अपनी सेवाएं दी है। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत शिविर लगाने के कई अनुभव आपके पास है। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आप वक्ता रहे हैं। कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी आपने संबोधन किया है। आप न केवल एक बहुत अच्छी वक्ता है लेकिन उतनी ही कुशल लेखिका भी है। ज्ञानामृत पत्रिका में जो आपके लेख प्रकाशित होते हैं, उन लेखों के द्वारा हम आपकी कलम से सुपरिचित हैं। वर्तमान समय ज्ञानामृत पत्रिका एवं त्रैमासिक हरियाली पत्रिका की आप सह संपादिका है। तो आइए हम क्लास सुनेंगे ईश्वरी खजानों की अनुभूति। आदरणीय उर्मिला बहन जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अनेकानेक अलौकिक खजाने दिए। बाबा कौन है, क्या क्या देते हैं, अपना सत्य परिचय दिया। इससे पहले हम लौकिक पिता को जानते थे, पारलौकिक पिता को, अलौकिक पिता को अब जाने। दुनिया में तीन प्रकार के पिता हैं। एक पिता है जानवर का पिता, जो अपने बच्चे को जन्म देता है लेकिन उसके लिए कुछ करता नहीं है। जैसे खुद आवारा घूमता है, बच्चा भी पीछे पीछे घूमता है, ना कोई संस्कार, ना कोई पढ़ाई लिखाई। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी जानवर का बच्चा अपने पिता को नमस्कार करे, रिगार्ड दे, उसके आने पे उठ के खड़ा हो जाए, ऐसा कोई शिष्टाचार जानवरों में नहीं है। दूसरे नंबर का पिता है मनुष्य का पिता, जो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है। खुद गरीब हो तो भी बच्चे को अमीर बनाता है, खुद ना पढ़ा लिखा हो तो बच्चे को पढ़ाता है, खुद के पास साधन ना हो तो भी बच्चे के लिए साधनों की कोशिश करता है उसे मिले। इसलिए मनुष्य का बच्चा अपने पिता की इज्जत करता है, उसको याद करता है, कहना मानता है, उसके जाने के बाद उसका श्राद्ध भी करता है, उसका फोटो भी घर में रखता है। और तीसरी प्रकार का पिता है परम पिता। अब परम पिता को तो सारी दुनिया याद करती है और कभी मौके बेमौके नहीं, हर दिन याद करती है। तो जिस पिता ने एक जन्म के लिए कुछ दिया उसको हमने याद किया, और अगर हम परम पिता को उससे कई गुना याद करते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उसके लिए भूखे रहते हैं, नंगे पांव यात्रा करते हैं, बहुत कष्ट सहन करते हैं तो अवश्य उसने लौकिक बाप से कई गुना अधिक दिया, इसलिए उसके लिए हम इतना कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो लौकिक बाप ने एक जन्म का दिया और पारलौकिक बाप ने पूरे कल्प के लिए दिया, इसलिए उसकी महिमा लौकिक बाप से कई गुना अधिक हो गई। लौकिक बाप से हमें जो भी कुछ मिलता है, सतयुग त्रेता में तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप का वर्षा नहीं मिलता, क्योंकि जो संगम में आप कमाई करते हैं वही मिलती है। द्वापर से वर्षा मिलना शुरू हुआ, द्वापर युग फिर भी रजो था, कलयुग तमो है, तो कलयुग में जो वर्षा मिलता है लौकिक पिता से, एक बार साकार मुरली में बाबा ने कहा था लौकिक वर्षे में बड़ा दुख है। विचार करने की बात है कि लौकिक वर्षे में दुख क्यों है, क्योंकि बाप केवल धन का वर्षा नहीं देगा, उसके पास जो भी कुछ होगा सब देगा। अगर किसी से उसकी दुश्मनी है तो बच्चे को कहेगा मैं इससे 20 साल नहीं बोला, तू भी नहीं बोलना। अगर उसमें कोई व्यसन है तो वो भी साथ में आएगा, मेजोरिटी। अगर उसमें कोई और चारित्रिक अवगुण है तो धन के साथ वो भी आएगा। इसलिए लौकिक वर्षा मिलता है लेकिन वो निरापद नहीं है। जैसे बाबा कहती हैं लौकिक बाप में जो भी कुछ होगा वो बच्चे को देगा, तो उसमें जो भी कमी कमजोरी जो भी कुछ होगा, इसलिए सुख मिलता है धन से, लेकिन जो कमी कमजोरियां हैं उनसे फिर दुख भी मिलता है। लेकिन पारलौकिक बाप से जो वर्षा मिलता है वो निरापद है, एकदम प्योर है, केवल सुखदायी है, और केवल एक जन्म का नहीं पूरे कल्प के लिए है। इसलिए बाबा कहती हैं कि जो मेरे बच्चे बन गए, मुझे जान गए, मेरे से जो प्राप्तियां कर रही हैं वो पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। और बाबा देता भी गुप्त है, लौकिक बाप तो हम देखते हैं, कई बार लोग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन लोगों को सुनाते भी हैं, उसका दिखावा भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं गुप्त हूँ और मैं जो कुछ देता हूँ वो भी गुप्त गुप्त देता हूँ। दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि भगवान हम बच्चों को क्या क्या दे रहा है। लास्ट में जब भगवान सब कुछ दे चुका होगा तब रहस्य पर से पर्दा उठेगा कि भगवान ने गुप्त गुप्त इनको कितना कुछ दे दिया। तो क्या हमें भगवान से प्राप्त उन गुप्त प्राप्तियों का नशा रहता है? दुनिया में धन की परिभाषा केवल रुपए पैसे से ली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि रुपए पैसे तो धन रूपी जड़ की टहनियां हैं, पत्ते हैं। असली जो जड़ है वो तो ज्ञान धन है। ज्ञान धन के अलावा लोग कहते हैं ये व्यक्ति कर्मों का धनी है, कोई कहता है ये जबान का धनी है, तो ये भी कोई कहता है ये नाम का धनी है। मीरा ने कहा पायो जी मैंने पायो, राम रतन धन पायो। तो ईश्वर का नाम भी बहुत बड़ा धन है, तो धन तो बहुत प्रकार के हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहला जो खजाना दिया वो ज्ञान का खजाना दिया। और बाबा ने मुरली में कहा कि जब आपको ज्ञान मिल गया तो आप उन फंसाने वाले बंधनों से मुक्त हो गए। तो सबसे पहले हमको कौन फंसाता है? शरीर फंसाता है। आत्मा जब संसार में आती है तो पहला बंधन शरीर है, शरीर में फंस करके दुखी होती है, शरीर को मेरा मानती है, शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है, दुखी होती है, शरीर को कहीं चोट लगती है दुखी होती है, शरीर को अनुकूल चीज नहीं मिलती है तो परेशान होती है। तो पहला बंधन शरीर, उसके बाद शरीर के संबंध। तो बाबा ने हमको पहले बंधन से छुड़ाया, ज्ञान का खजाना देके फंसने से बचाया। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया कि आप आत्मा हैं, ये पहला खजाना है। इसके अलावा और भी बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान का सारा बेस इसी पर है। तो क्या हमको चलते फिरते ये अनुभव रहता है? क्या हम उस खजाने को यूज करते हैं? क्या क्या हम एक दो को देखते समय आत्मिक दृष्टि अप्लाई करते हैं? क्या हमको ये नशा है कि जो किसी को भी नहीं दिखती वो आत्मा मुझे दिख रही है, जिसे कोई नहीं जानता वो ज्ञान मुझे है? दुनिया में अगर किसी व्यक्ति के पास कोई हुनर होता है तो उसे बहुत नशा रहता है कि मेरे पास ये कला है, बाकी किसी के पास नहीं है। जादू की कला होती है, कोई पढ़ाई से कोई बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ी है या कोई और गुण पूर्वजों से मिला है तो उसको नशा होता है। तो हमको भी नशा है कि जिस आत्मा को कोई नहीं जानता, बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग, उस आत्मा को हम जानते भी हैं, भीतर के नेत्र से देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं और उसके आधार पर हम सारा दिन व्यवहार भी करते हैं और इसलिए शरीर में रहते हुए बंधन मुक्त भी रहते हैं। ये बड़े से बड़ा हमको नशा है। अब जैसे मान लीजिए, कई बार हम देखते हैं लोग समस्या लेकर के आते हैं कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, ऐसी बात कह दी, मुझे बार बार चुभ रही है। एक छोटी सी बात ने 6 फुट के आदमी को घायल कर दिया, परेशान कर दिया। बात में वजन तो 1-2 ग्राम भी नहीं है। अब ज्ञान का खजाना कहाँ काम आता है? जब हम बाबा के दिए ज्ञान को यूज करते हैं तो हम क्या चिंतन करते हैं कि देखो इस व्यक्ति ने बात कही, मेरे कानों ने सुनी तो कान में तो दर्द हुआ नहीं, और इस बोलने वाले को मेरी आंखों ने देखा, आंखों में भी दर्द नहीं हुआ, तो ये दर्द कहां हुआ? दर्द तो शरीर में होता है, किसी ने कड़वी बात कही, चुभी, आंख को भी दर्द नहीं, कान को भी दर्द नहीं, कहां दर्द हुआ? भीतर में भीतर कौन है? आत्मा को दर्द हुआ ना। अब डॉक्टर के पास कोई जाए कि जी उसने कड़वी बात कही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट लगा लेगा, कहेगा आपका बीपी भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, बॉडी टेम्परेचर भी ठीक है, आपको तो कहीं कुछ भी नहीं है, और हम कहेंगे जी हमको तो बहुत दर्द। तो ये दर्द किसको हो रहा है? आत्मा को। अब आत्मा को ये दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए कि उसकी बात को सुन के वो अपने सिंहासन से नीचे उतर गई या उतरी हुई थी और तब उसने वो बात सुन ली, जिसको बाबा कहता है स्वमान में रहो और स्व के स्वरूप की स्मृति में रहो। अगर हम स्वमान में हैं कि मैं तो ज्ञान खजाने का मालिक हूँ, भगवान का बहुत प्रिय बच्चा हूँ, अगर इस स्वमान में टिके हुए हैं तो बात आती और पानी पर लकीर की तरह चली जाती। लेकिन हम सिंहासन से उतरे हुए थे, हमारे पास कोई सार्थक बात तो थी नहीं, तो उस निरर्थक बात को पकड़ के बैठ गए। अब वो बात चुभ भी रही है फिर भी उसको पकड़ के बैठे हुए, छोड़ना चाहते हैं लेकिन आत्मा इतनी कमजोर है कि उसके पास कोई समर्थ बात नहीं है, तो व्यर्थ को पकड़ के बैठ गई है। जैसे कोई बिच्छू को पकड़े भी और डंक भी खाए, अरे भाई डंक नहीं खाने है तो बिच्छू को छोड़ दो, अगर ये बात अच्छी नहीं है तो इस बात को छोड़ दो, पर हम उस बात को पकड़ के भी रखते हैं और उस बात से दुखी भी होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आत्मा अपने स्वमान में नहीं है, अपने स्वरूप में टिकी हुई नहीं है। तो ये जो ज्ञान है ये कितना बड़ा खजाना है कि मुझे अपने सिंहासन पर बैठे रहना है। अगर मैं सिंहासन पर हूँ, अपने स्वमान की सीट पर हूँ, तो बात कब आई और कब चली गई, एक मनोरंजन महसूस होगी, खेल महसूस होगी, आनंद आएगा उसको देख करके, लेकिन वो चुभेगी नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को बातों के बीच में रहते हुए न्यारा बनना सिखा दिया। कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा था, कोई कलंक भी लगाएगा, झूठ भी बोलेगा, है इल्जाम भी लगाएगा, लेकिन तुम बच्चों को भयभीत नहीं होना, तुम बच्चों को चिंतन नहीं करना है, ये बातें आएंगी और चली जाएंगी। अब कोई झूठा इल्जाम लगाए और फिर भी हम मुस्कुराएं, ये कितनी बड़ी ताकत है। और ये ताकत आती कैसी है, जब हमें आत्मा का ज्ञान है और हम आत्मा के स्वरूप में टिके हुए हैं। इसी तरह से शरीर को कोई दर्द है, तकलीफ है, तो बाबा ने हमको शरीर से डिटैच होकर के उस दर्द को सहन करने की बहुत सुंदर युक्ति बताई। ये तो दुनिया ही ऐसी है, हम कितना भी सुरक्षित रहना चाहें फिर भी कोई रोग शोक पोल्यूशन की दुनिया है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को ये ज्ञान का खजाना दिया कि अगर आप आत्मा की स्मृति में रहेंगे तो दर्द की फीलिंग नहीं होगी, नाम मात्र होगी। आत्मा की स्मृति में नहीं होते हैं तो वही छोटी सी बात बहुत बड़ी लगती है। अब इस बात को भी हम सोचें कि दर्द किसको होता है और क्यों होता है। जैसे कई बार हमारे घर में कमरा है कोई, और एक जगह बिजली का केंद्र होता है जिसको अपन मीटर लगा हुआ कहते हैं, वहां से हमारे सारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की तारें जाती हैं। अब मान लीजिए एक कमरे में कोई बिजली का उपकरण खराब हो गया, ट्यूब खराब हो गई, एसी खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, जो मेन जगह है वहां से उस कमरे में जो तार गई होती है उसको एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करते हैं, और ठीक करने के बाद तार को फिर जोड़ देते हैं। एक बार तो डिस्कनेक्ट करते हैं ना। तो ऐसे ही इस शरीर के भीतर छोटी छोटी शिराएं जाल की तरह से फैली हुई हैं, जो दर्द की सूचना ब्रेन के माध्यम से आत्मा को देती है। मान लो पांव में कांटा चुभा, तो वो जो शिरा है वो पांव से मैसेज लेकर के जाती है, ब्रेन के माध्यम से आत्मा को देती है, आत्मा को पता पड़ता है दर्द हुआ। उसके बाद आत्मा आदेश देगी कि हाथ लगा के देखो दर्द किस चीज का है, कांटा चुभा, कोई कांच का टुकड़ा चुभा, या किसी जहरीले जानवर ने काटा। अब हाथ लगाया तो देखा एक छोटा सा कांटा है, आंख देखेगी अंदर मैसेज देगी कांटा है, फिर आत्मा डिसीजन देगी कांटा है, कोई बात नहीं है निकाल के फेंक दो। अब मान लीजिए हमारे किसी अंग का ऑपरेशन होना है, उंगली का पांव का, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया देता है, अंगूठे का ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर क्या करता है, ये जो जाल बिछा हुआ है शिराओं का, थोड़ी देर के लिए अंगूठे वाली को डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे हमने बिजली की तारों को काट दिया और उस कमरे में लाइट का कनेक्शन नहीं है, बाकी सारे घर में है, इसी तरह से उन आज्ञा पहुंचाने वाली शिराओं को वो डिस्कनेक्ट कर देता है, बाकी सारी शरीर में चेतना है लेकिन अंगूठे में चेतना नहीं है। और डॉक्टर अंगूठे को काटेगा, चीरा लगाएगा, जो भी कुछ करेगा सब करेगा, लेकिन हमको दर्द नहीं होगा। और जैसे ही ऑपरेशन पूरा होगा वो जो शिराएं डिस्कनेक्ट की थी उनको फिर से चालू कर देगा, जैसे उपकरण ठीक होने के बाद हमने बिजली की तारें फिर जोड़ दी, अब अंगूठे में चेतना आ जाएगी, लेकिन ऑपरेशन तो हो चुका, अब चेतना आती रहे, दर्द नहीं होगा। तो ये साइंस का तरीका है। अब बाबा ने हमको अध्यात्म के द्वारा ये तरीका सिखाया कि अगर हम अपनी चेतना को शरीर के अंगों से निकाल करके और आत्मा में ही कंसंट्रेट कर दें तो दर्द की फीलिंग कम से कम आएगी, और अगर हम अपनी चेतना को उस दर्द वाले अंग में अधिक रखते हैं तो दर्द की फीलिंग अधिक आती है। तो जितना आत्मा की स्मृति में रहेंगे, आत्मा पर कंसंट्रेट करेंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे, तो अंगों में जो हमारी चेतना बिखरी हुई है वो एकत्रित होकर के आत्म चेतना के रूप में बन जाएगी और दर्द की, दुख की या जो भी कष्ट है शरीर में उसका एहसास कम से कम होगा। अब ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है बाबा ने दिया, इसलिए जो बाबा के बच्चे हैं बड़ी बड़ी बीमारी में भी ऑपरेशन में भी घबराते नहीं, चिल्लाते नहीं, मुस्कुराते रहते हैं, बाबा साथ है, बाबा कर रहा है, बाबा सामने खड़ा है, ये एक बहुत बड़ी बाबा की तरफ से हम बच्चों को नेमत है, बहुत बड़ा खजाना है। किस लिए? क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान मिला है। तो दुनिया की कितनी सारी परेशानियां हैं जो इस ज्ञान के द्वारा खत्म होती हैं। इसी तरह से बाबा ने हम बच्चों को गुणों का खजाना दिया। लौकिक दुनिया में लोग आमतौर पे कहते हैं कि गुणों से कोई पेट थोड़े भरता है, पेट तो हाथ में पैसा होगा तभी भरेगा, इसलिए गुण गुणों की जगह है, धन धन की जगह है। लेकिन बाबा ने बच्चों को सिखाया अगर आप में गुण है तो गुणों की बदौलत धन अपने आप पीछे आ जाता है। दुनिया में तो लोग धन प्राप्त करने के लिए गुणों को नष्ट कर देते हैं, शांति नष्ट कर देते हैं, प्रेम को नष्ट कर देते हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बात सिखाई कि ये गुण ही आपका खजाना है और किसी भी परिस्थिति में अपने गुणों को नष्ट नहीं होने देना है। अगर आप गुणों को संभाल करके रखेंगे तो आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। हम बचपन में एक बात सुना करते थे, बच्चों को जब वैल्यू सिखाते हैं तो वो बात सिखाते हैं, स्कूल में बच्चों को मूल्य सिखाए जाते थे तो कई बच्चे कहते थे कि हमको तो पढ़ लिख करके डिग्री लेके बहुत पैसा कमाना है, अगर हम इन मूल्यों को, दया को, प्रेम को सीखेंगे तो हमारा पेट थोड़े भर जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे स्कूल से निकल रहे थे, स्कूल से जब निकले तो बहुत तेज आंधी तूफान आया और स्कूल के आगे से एक बुजुर्ग आदमी जा रहा था, उस बुजुर्ग आदमी की टोपी तूफान में उड़ गई। तो बच्चों को खेल मिल गया, एक बच्चे ने टोपी पकड़ी उसको उछाला, दूसरे ने और आगे उछाला, तीसरे ने और आगे उछाला और बेचारा बुजुर्ग परेशान हो रहा था, तूफान, मिट्टी उड़ रही है, आयु बड़ी है, दौड़ भी नहीं सकता है, टोपी टोपी चिल्ला रहा और बच्चे टोपी से खेल कर रहे। तो एक बच्चा ये सब देख रहा था, वो बहुत तेज दौड़ा और उसने टोपी को पकड़ लिया और लाके बुजुर्ग के सिर पे रख दी और सिर पे रख करके उसके पांव छुए और कहा, मेरे साथी बच्चों से आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, आपको कहाँ जाना है मैं आपको छोड़ आता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, नहीं मैं अपने आप चला जाऊंगा बेटा, अपना नाम बता दो और अपनी कक्षा बता दो। तो बच्चे ने अपना नाम बताया, अपनी कक्षा बताई, उसके बाद अगले दिन प्रेयर हुई तो वो बुजुर्ग आया प्रेयर में। जिन बच्चों ने टोपी उछाली थी वो तो डर गए कि अभी शिकायत होगी और हमारी पिटाई होगी। प्रेयर के बाद उस बुजुर्ग ने कहा कि आपके यहाँ एक आठवीं क्लास में रामू नाम का बच्चा पढ़ता है, तो जो तीन चार बच्चे टोपी उछालने वाले थे उनकी जान में जान आई, चलो हमारा नाम तो नहीं आया, और वो बच्चा जिसने टोपी पकड़ी थी वो खड़ा हो गया। तो उसने टीचर को कहा कि आपके स्कूल में बच्चे तो बहुत है पर मुझे पढ़ा लिखा बच्चा तो यही लग रहा है, लगता है बाकी बच्चे यूं ही आते हैं यूं ही जाते हैं और मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं और मैं आज से ये घोषणा करता हूं कि ये बच्चा जिंदगी में जितना भी पढ़ेगा इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब जो बाकी तीन बच्चे थे वो मुंह देखने लगे उसका, क्योंकि वो बच्चे अक्सर कहते थे कि गुणों से पेट थोड़े भरता है, हम तो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के पैसा कमाएंगे। अब इस बच्चे ने एक छोटे से गुण को प्रैक्टिकल रूप में दिखाया एक बुजुर्ग पर दया की, मुसीबत में थोड़ी सी मदद की थी, बहुत बड़ी मदद भी नहीं की थी, लेकिन एक दया का गुण उसमें विद्यमान था। तो उस दया के गुण ने बिना बात उसको एक रईस आदमी का वारिस बना दिया बिना मेहनत के। तो गुणों की बहुत बड़ी कीमत है। जिस व्यक्ति में गुण हैं, अपने आप दुनियावी पदार्थ साधन पीछे पीछे आते, और गुण नहीं होते हैं तो कमाया हुआ भी नष्ट हो जाता है। आजकल देखो झगड़े में, मुकदमे में और कितनी बातों में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, व्यसन लग जाते हैं तो आया हुआ भी चला जाता है। भारत में तो बहुत राजा थे, बहुत नवाब थे, आज देखो उनके बच्चे रिक्शा चला रही हैं, कहाँ चला गया धन? क्योंकि गुणों के बिना धन को संभालना भी मुश्किल है। इसलिए बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम बच्चों को धन का खजाना देता हूँ, ज्ञान का खजाना देता हूँ, ज्ञान ही धन है, गुणों का खजाना देता हूँ, गुण ही धन, शक्तियों का खजाना देता हूँ, शक्तियां ही धन है। तो हम बच्चे बाबा से रोज गुण सीखते हैं, हर रोज वरदान में, स्लोगन में, कभी सहनशीलता की बात आती है, कभी दया की बात आती है, शुभ भावना की बात आती है, स्नेह और सहयोग की बात आती है। तो इन गुणों में जो जितना संपन्न है वो वर्तमान समय भी अमीर है और भविष्य में तो वो अमीर है ही है। और इन गुणों की एक विशेषता और भी है, जैसे हम देखते हैं कि करेंसी की तो एक लिमिट होती है, इंडिया की करेंसी इंडिया में चलेगी, एक्सचेंज का भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया है, और बाहर की करेंसी बाहर चलेगी, लेकिन ये गुण तो ऐसी चीज है, इनके आगे कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। आपका प्रेम इंडिया में भी चलेगा, इंडिया से बाहर भी चलेगा, आपकी दया इंडिया में भी चलेगी, इंडिया से बाहर भी चलेगी, आपकी सहनशीलता यहाँ भी काम आएगी, बाहर भी काम आएगी। इसलिए ये अनलिमिटेड, संस्कृत में कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा गुणवान तु सर्वत्र पूज्यन्ते। जो राजा होता है वो केवल अपनी प्रजा द्वारा पूजा जाता है, क्योंकि डर है ना प्रजा को, ताकत से डर लगता है, लेकिन जो गुणवान है उसको तो सारी दुनिया पूजती है। तो बाबा हमको विश्व कल्याणकारी बनाते हैं गुणों के बल से। हमें बाबा ने कितने गुणों का खजाना दिया है गिनती करें, एक में से दूसरा गुण निकलता है, दूसरे में से तीसरा गुण निकलता है। इसी तरह से बाबा ने शक्तियों का खजाना दिया है, सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इस बार की मुरली में बाबा ने कहा मैं आप बच्चों को सहन शक्ति का इनाम देता हूँ। दुनिया में किसी को इनाम मिलता है तो सामने ड्राइंग रूम में या कहीं दीवार पे लगा के रखता है, घर में कोई आता है तो उसको दिखाता है कि मुझे ये अवार्ड मिला है, ये इनाम मिला है, लोग पूछते तुमने क्या किया था, तो वो बताता है कि मैंने ये वाली विशेषता, ये वाली कला दिखाई तो मुझे ये इनाम मिला। वो इनाम देने वाला तो कोई मनुष्य होता है, लेकिन हमें जो इनाम दिया वो किसने दिया? स्वयं भगवान ने दिया। और क्यों दिया, कौन सा गुण दिखाया, दिखाया या दिखाते रहते हैं, हर परिस्थिति में एडजस्ट होने का गुण दिखाया तो भगवान ने ये इनाम दिया, ये अवार्ड दिया। बाकी जो अवार्ड होते हैं, इनाम होते हैं, वो तो कागज के टुकड़े के रूप में होते हैं, फट जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन बाबा ने हमें जो दिया वो तो आत्मा के साथ रहेगा, आत्मा का अविनाशी गुण, आत्मा की अविनाशी शक्ति के रूप में रहेगा। तो हम सबको कितनी बड़ी शक्ति मिली। कई लोग समझते हैं कि सहन करना, कई बार ऐसा समझ लेते हैं कि सहन करना कमजोरी है, लेकिन सहन ना करना कमजोरी है, सहन करने के बहुत फायदे हैं। कहते हैं सहना ही सोने का गहना है, किसी आदमी के पास कोई सोने की अमूल्य चीज हो तो उसे बार बार देखता है, मेरी अंगूठी है कहीं गिर तो नहीं गई, आजकल तो बैज भी सोने के हैं तो देखते हैं कि बैज है कहीं गिर तो नहीं गया। तो सेना सोने का गहना है, तो जैसे बैज जरूरी है ऐसे सहनशीलता भी जरूरी है। जैसे हम दिन में 10 बार देखते हैं मेरा बैज मेरे पास है, तो हमको ये भी तो देखना चाहिए ना, मेरी सहनशीलता मेरे पास है कहीं वो गिर तो नहीं गई। तो सहनशीलता को संभाल के रखना, छोटी सी बात आई और वो छूट गई, छोटी सी घटना घटी और सहनशीलता खत्म हो गई, तो मानो हमने अपने सोने की अमूल्य चीज को छोड़ दिया। सहनशीलता के कई फायदे हैं। मान लीजिए किसी ने हमारे से अप्रिय व्यवहार किया जो हमको अच्छा नहीं लगा, तो मूड खराब हो गया, चिंतन चलने लगा, नेगेटिव थिंकिंग आ गई, खुशी गायब हो गई, क्योंकि उसने हमसे बढ़िया नहीं बोला, बढ़िया व्यवहार नहीं किया, मन में उदासी आ गई। अब वो व्यक्ति तो चला गया, थोड़ी देर में एक और व्यक्ति आया जिसने हमसे बहुत बढ़िया व्यवहार किया, मीठा बोला, बहुत सम्मान दिया, हमारी बात सुनी, हमें बहुत प्यार से देखा। लेकिन होगा क्या कि हम पहले वाली कड़वाहट से अपना मुंह कड़वा करके बैठे हुए हैं, तो अगर ये व्यक्ति हमें प्यार भी करेगा, इज्जत भी देगा, हमारी बात भी सुनेगा, हमें मदद भी करेगा, तो भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुंह कड़वा है ना। अब मुंह में कड़वा हटे और कोई मीठा खिलाए तो वो मीठा भी कड़वा हो जाता है। तो पहले व्यक्ति से तो हम इसलिए खफा हुए कि उसने हमको अनुकूल व्यवहार नहीं दिया, और दूसरा अनुकूल देने आया उससे भी हम खफा हो गए क्योंकि हमारा मूड एक रस नहीं था, मूड खराब था। तो कितना नुकसान हुआ, एक को नाराज किया फिर दूसरे को भी नाराज किया। कई बार ऐसे होता है एक से नाराज है, सामने दूसरा आ गया उसको भी डांट मार दी, उसको भी बोल दिया, अब वो कहेगा मेरा कोई दोष ही नहीं था, मूड तो पहले बिगड़ा हुआ था क्योंकि सहनशीलता नहीं थी तो मन उखड़ गया था। इसलिए कहा जाता है कि राग और द्वेष दोनों में मन स्थिति को समान रखो। पहले वाले ने हमसे अनुकूल व्यवहार नहीं किया, अगर उस समय हम अपनी मन स्थिति को ठीक रखते तो जो दूसरा व्यक्ति अनुकूल व्यवहार वाला आया उसके व्यवहार से हमें प्रसन्नता मिलती, तो दोनों वक्त हम प्रसन्न रहते, प्रतिकूल के सामने भी और अनुकूल के सामने भी। और अगर सहनशीलता नहीं है तो प्रतिकूल के सामने भी मूड उखड़ गया और अनुकूल के सामने भी उखड़ गया, तो दोहरा नुकसान हो गया। इसलिए जीवन का आनंद लेने के लिए बाबा ने कहा खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, खुशी को मेंटेन रखने के लिए अपनी भीतर शांत साम्राज्य सदा बना रहे, इसके लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। सहनशीलता से भी एक सुंदर शब्द है जिसको हम कहते हैं बात को ओवरकम करना, संघर्ष नहीं करना लेकिन उसके ऊपर से निकल जाना। तो उसमें हमें ये नहीं लगता कि हम सहन कर रहे हैं, हमको ऐसे लगता है कि हम ऊपर हैं और बात नीचे है, हम बड़े हैं और बात छोटी है। सहन कर रही है वो कब लगता है, जब संघर्ष करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आपको संघर्ष करना ही नहीं, आपको तो बातों को क्रॉस करना है, जंप लगाना, आपको तो उड़ना है। अगर आप जमीन पर रहते हैं तो संघर्ष होगा, लेकिन या तो आप किनारा करिए, जैसे पानी है, लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है कि पानी को अपना गुरु बना लीजिए। पानी में एक बहुत बड़ी खासियत है, मान लो पानी के साथ एक सामने एक चट्टान आ गई तो पानी कभी उसके साथ संघर्ष नहीं करता कि तुम हटो, और मैं आगे बढ़ूं। अगर चट्टान के ऊपर से गुजर सकता है तो वो ऊपर से गुजरेगा, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वो दो हिस्सों में बटेगा, आधा चट्टान के इधर से गुजरेगा, आधा चट्टान के इधर से गुजरेगा। अगर चट्टान में कहीं थोड़ी बहुत भी खाली जगह है, कोई सुराख है, उसमें से गुजरेगा, आगे जाकर के फिर एक हो जाएगा। उसके सामने एक लक्ष्य है कि मैं संघर्ष करूंगा तो समय जाएगा, इसको तो कोई काम है नहीं, इसको तो खड़े रहना है, यूजलेस लाइफ है इसका तो, लेकिन मुझे तो बहुत लंबी यात्रा करनी है, तो वो बहता जाता है। बड़ी चट्टान आई तो इस तरह से पार करेगा, छोटे पत्थर आए रोकने की कोशिश की तो उनको साथ ले चलता है, उनको कहता है तुम भी मेरे साथ बहो, तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो जो छोटे पत्थर के टुकड़े थे उनके पहले कोने थे टेढ़े मेढ़े, अवगुणी मनुष्य के कोने होते, इधर क्रोध का कोना, इधर लोभ का कोना, कभी किसी को क्रोध चुभता है, कभी उसका लोभ चुभता है, कभी अहंकार चुभता है। तो पानी क्या करता है, उनको साथ बहा के ले जाता है और उनके कोने झाड़ देता है, बहाते बहाते अपने संग का रंग लगा देता है। पानी को तो कोई कोना है ही नहीं ना, पानी का लाइफ इतना स्मूद है कि वो जहां डालो वही एडजस्ट हो जाता है, उसको कोना या उसको है ही नहीं। तो वो उस पत्थर के टुकड़े को भी कहता है तुम भी झाड़ दो अपने कोने, मेरे जैसे बन जाओ, संग का रंग लगाता है और देखो वो पत्थर घिस घिस करके गोल गोल शालिग्राम बन जाते हैं और पूजनीय बन जाते हैं। लोग पानी की तो पूजा करते हैं, नदी में बहते हुए पानी में स्नान करते हैं, नमस्कार करते हैं, बोतल में भरते, गंगा का पानी भी पूजनीय, इसके अलावा भारत में बाकी पानी को भी लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तो पानी खुद तो पूजनीय है, लेकिन उसने उस पत्थर के बेजान टुकड़े को भी पूजनीय बना दिया। दुनिया में लोग कहते हैं कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और पानी कहता है जो मेरे से टकराएगा वो पूजनीय बन जाएगा। तो बाबा हम बच्चों को पानी जैसा बनना सिखाते हैं, जो आपसे टक्कर खाए, संघर्ष करे, आपको दुख दे, इल्जाम लगाए, कलंक लगाए, रास्ता रोके, विरोध करे, आप पानी बन करके उसे भी अपने साथ ले लो, उसके भी कोने झाड़ दो ताकि वो भी सुखी हो जाए। वो दुखी है इसलिए दूसरों को दुख देता है, उसका दुख खत्म हो जाएगा तो वो दुख देना बंद कर देगा। और दुख खत्म कब होगा, जब आप अपने सुख का रंग उसको लगाएंगे कि देखो मैं कितना सुखी हूं, तुम भी सुखी हो जाओ। तो संग का रंग लगाना ये हमको पानी से सीखना, जैसा भी स्थान हो अपना अपने आप को ढाल लेना ये भी पानी से सीखना। फिर बाबा कहते हैं संगम युग में समय बहुत बड़ा खजाना है, शक्तियां तो बहुत हैं, हमने एक सेंस शक्ति की बात की, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। बाबा कहते हैं भूलना भी शक्ति है, किसी बात को याद करना भी शक्ति है, मन को किसी चीज में लगाना भी एक बड़ी शक्ति है, और लगे हुए मन को वहां से हटाना भी बहुत बड़ी शक्ति है, मन को पूरी तरह से रोक लेना भी शक्ति है, और अगर ये गलत जगह जाता है तो इसको एक नया मोड़ देना वो भी एक शक्ति है। शक्तियां तो बहुत सारी और ये सब शक्तियां बाबा ने हम बच्चों को वरदान में दी है, लेकिन इनको हम यूज करें। भगवान का काम है देना, देने के बाद हमारे दो काम है, एक काम है संभालना और दूसरा काम है यूज करना। कई लोग चीज को संभालते बहुत हैं, इतना संभालते हैं कि उसको दीमक लग जाती है, इतना संभालते हैं कि वो कहाँ रखी है रख करके ही भूल जाते हैं, इतना ज्यादा संभालते हैं कि मौके पर वो याद ही नहीं आती कि मैं उसको यूज करूं। ऐसी संभाल भी नहीं चाहिए, संभालें लेकिन समय पर यूज भी करें। कई लोग चीज को रखते हैं लेकिन समय आने पर यूज नहीं करते हैं। तो संभालना और यूज करना ये दो बहुत बड़ी कलाएं हैं। बाबा ने हमें जो कुछ दिया उसको संभालना है। संभालने का मतलब क्या है? परिस्थिति आए तो वो चीज हमसे छूट ना जाए। जैसे लोग धन को संभालते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आपके पास 1,00,000 रुपए एक पोटली में है, उसी कंपार्टमेंट में चोर घुस गया। अब चोर सोचता है कि आप सो जाएंगे तो वो पोटली निकाल लेगा, लेकिन आप सोएंगे नहीं क्योंकि आपको अपने धन से बहुत प्यार है। आप जागते रहेंगे जब तक वो बैठा रहेगा, और जागते रहेंगे, झुटका भी नहीं खाएंगे, पोटली को कसके हाथ से पकड़ेंगे, एक मिनट भी नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको प्यार है ना। आप कभी भी ये शिकायत नहीं करेंगे कि ये चोर बैठा है, इसको ले जाओ यहां से ताकि मैं सो जाऊं। आप कहेंगे बैठा रहे बेशक, लेकिन मैं अपना धन पकड़ के रखूंगा। इसको कहते हैं संभाल, इसको कहते हैं प्यार। हम कष्ट सहन करेंगे, नींद का त्याग करेंगे, लेकिन हम अपने धन को चोरी नहीं होने देंगे। संभाल। इसी तरह से दुनिया में सहनशीलता के भी चोर हैं, हमारी शांति के भी चोर हैं, हमारे गुणों के भी चोर हैं। और वो वाले चोर तो आपको कहीं बस स्टैंड पे, जैसे कहते हैं पॉकेट मार से सावधान रहो, तो कहीं ऐसी भीड़ भड़ाके की जगह में मिलेंगे। लेकिन सहनशीलता के चोर तो हर घर में हैं, नम्रता के चोर भी हर घर में हैं, खुशी के चोर भी हर घर में हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई इन घर वालों को बाहर निकालो तो मैं सुख से सोऊं, इन चोरों को घर से बाहर निकालो तो मेरी खुशी बनी रहे, इन चोरों को बाहर निकालो तो मेरी सहनशीलता बनी रहे। हम ऐसी कंडीशन तो नहीं लगा सकते, वो तो रहेंगे घर में, हमको भी उनके बीच में रहना है। लेकिन जैसे हमने धन को संभाल के रखा है, ऐसे अपनी सहनशीलता को पकड़ के रखना है। ये बोलेगा मुझे मालूम है, पर मैं भी सहनशील रहूंगा, ये अपना बोलना नहीं छोड़ता, मैं अपनी सहनशीलता नहीं छोड़ता। चोर की हिम्मत देखो ना, वो सारी रात जागता है। तो अगर वो जाग सकता है चोरी के लिए, तो मैं भी धन की सुरक्षा के लिए जागता हूं। तो अगर सामने वाला बोलने की मेहनत कर रहा है, कड़वा बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, अगर वो बोलने की मेहनत कर रहा है तो मैं भी सहनशीलता की थोड़ी मेहनत कर लूं, सहनशीलता को संभाल लूं, मैं भी थोड़ा जागरूक रह लूं। ऐसे तो हो नहीं सकता कि सामने वाला बेचारा मेहनत नहीं लगती क्या? उसमें भी तो मेहनत लगती है ना, उल्टा बोलने में भी। तो अगर वो मेहनत कर रहा है तो मैं भी मेहनत कर लूं अपनी स्थिति बनाए रखने की। तो संभाल के रखना है मुझे, मैं शिकायत नहीं कर सकता कि ये ऐसे करता है इसलिए मेरी खुशी गायब होती है, ये ऐसे करता है इसलिए मेरी सहनशीलता चली जाती है। उनको तो लाइसेंस मिला हुआ है, वो तो करेंगे। कहाँ से मिला हुआ है लाइसेंस? ये रावण की दुनिया है और रावण ने सबको लाइसेंस जारी किया हुआ है, इसलिए वो तो अपना वैध काम कर रहे हैं, अवैध नहीं है उनका काम। हमको भगवान ने लाइसेंस दिया है सहनशीलता का, हम अपने वाला क्यों छोड़े? जब वो रावण वाला नहीं छोड़ते, हम राम वाला क्यों छोड़ते हैं? हम भी तो अपना संभाल के रखे ना। इसलिए उनको देख करके हमको दृढ़ होना चाहिए कि ये अपने काम में कितने दृढ़ है, तो हमको भी इतना ही दृढ़ होना चाहिए। तो एक संभालना और समय पर यूज करना। बाबा ने जो इतनी चीजें दी हैं, हमारे पास हैं, हमको मालूम है, हम सुनते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वो यूज हुई, उसको हमने काम में लगाया, तब तो होगा कि हाँ मेरे पास वो चीज है। जैसे आप देखते हैं दुनिया में भी लोगों के पास चीजें होती हैं, काम में नहीं लगाते। बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, जहां जरूरत है, जहां धन कई गुना प्राप्ति करा सकता है, वहां नहीं लगाते हैं, और फिर वो धन मिट्टी के भाव मिट्टी में मिल जाता है। तो यूज नहीं किया ना, था यूज नहीं किया। तो हम बाबा ने जो खजाना दिया उसको समय पर यूज करें। अब समय है और अब मुझे यूज करना है। इसके लिए जो चौथा खजाना बाबा ने बताया, समय का खजाना, उसकी बहुत कदर चाहिए। संगम युग का एक एक सेकंड अमूल्य है। केवल तन बिजी रहे ऐसा नहीं, लेकिन एक साथ तन भी मन भी सब बिजी रहे तो हम डबल ट्रिपल फायदा उठाएंगे। जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि कर्म योगी बनकर के आप बच्चों को कर्म करने ही है, तो और कर्म करते स्मृति रखनी है कि मैं परमात्मा का प्यारा बच्चा हूँ, परमात्मा का लाडला बच्चा हूँ, तो डबल कमाई हो रही है। मन में नशा है कि मैं भगवान का लाडला बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ। भगवान का लाडला बच्चा कौन है? जो उसकी श्रीमत पर चलता है, जो उसका कहना मानता है, जो उसके दिए हुए खजानों को अपने और संसार के कल्याण के काम में लगाता है। तो मैं लाडला बच्चा हूँ, खजानों को सफल करने वाला बच्चा हूँ, यूज करने वाला बच्चा हूँ, संभालने वाला बच्चा हूँ। ये मन में संकल्प चल रही है, अनुभव हो रहा है खजानों का मालिक, और हाथों से कर्म हो रहा है, तो देखो डबल कमाई है। समय कहते हैं लोक सुहेला और परलोक सुहेला। शरीर से हम जो कर्म कर रहे हैं वो लौकिक लोक को सुहेला बनाता है, और मन से हम जो अच्छा चिंतन कर रहे हैं वो हमारे परलोक को सुहेला बनाता है। बाबा ने कहा है संगम युग की एक सेकंड भी वर्षों के समान अमूल्य है। कारण क्या है? क्योंकि संगम युग में पदम गुणा कमाई कराने वाला बाबा हमारे साथ है। लौकिक दुनिया में हम देखते हैं कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसका समय बहुत कीमती हो जाता है, क्योंकि वो टीचर के सामने है, पढ़ रहा है। वही बच्चा अगर गाय भैंस चराता है तो उसके समय की इतनी कीमत नहीं है, लेकिन पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देता है तो एक एक पीरियड की कीमत है। इस पीरियड में ये करना है, इस पीरियड में ये करना है, बैठ नहीं सकता है, कहीं आवारा घूम नहीं सकता, इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि स्टूडेंट है। अगर वो सतगुरु के सामने होता है, सतगुरु से दृष्टि लेता है, वरदान लेता है, प्रवचन सुनता है, तो जो स्कूल की पढ़ाई में उसकी समय की कीमत थी, सतगुरु के सामने उससे भी ज्यादा कीमत होती है। क्योंकि सतगुरु का मिलना बहुत कम समय के लिए होता है, सेकंड की दृष्टि से वो निहाल करता है। अब ये जो संगम का समय है, ये हमारा स्टूडेंट लाइफ भी है, हम टीचर के सामने भी हैं और हम सतगुरु के सामने भी हैं, नजर से निहाल होने का समय है। पूरे कल्प में इसी समय सतगुरु हमारे सामने है, जो पूरे कल्प के लिए वरदान दे रहा है, पूरे कल्प के लिए हमें मालामाल कर रहा है। तो सतगुरु के सामने अगर नजरें झपकती हैं, सतगुरु के सामने अगर लापरवाही होती है, सतगुरु के सामने अगर निद्रा आती है, सतगुरु के सामने अगर व्यर्थ है, तो फिर सतगुरु के वरदानों से वंचित हो जाएंगे। बहुत मेहनत करके तो सतगुरु मिला, भक्ति के बाद तो सतगुरु मिला, और उसके सामने हम समय की कदर नहीं करते तो वरदानों की कदर कैसे करेंगे? इसलिए अब हमारा जीवन ऑर्डिनरी नहीं है, हम अपने गुरु और सतगुरु के सामने हैं, पूरा संगम युग हम उनके सामने हैं। इसलिए हमारा एक एक सेकंड प्राप्ति कराने वाला है। एक सेकंड की प्राप्ति कई जन्मों की प्राप्ति का अनुभव कराने वाली है। इसलिए समय बहुत बड़ा खजाना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि देखो बाबा मम्मा ने भी आप बच्चों की तरह ही पुरुषार्थ किया, लेकिन उन्होंने नींद में भी पुरुषार्थ किया, उन्होंने अपनी नींद को भी ऐसा बना लिया था जो कमाई का साधन बन गई थी। तो अगर हम कर्म करते याद नहीं करते, नींद में भी याद नहीं करते, और केवल बैठ करके कितना याद करेंगे, उससे तो हमारे 63 जन्मों के विकर्म खत्म हो और आगे हमारी पूरी कल्प के लिए कमाई जमा हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये दोनों बातें तब पॉसिबल होंगी जब हम कर्म करते भी योग में रहें और अपनी नींद को भी ऐसा सतोगुणी बनाएं कि वो भी हमारी कमाई में जमा हो, तो हम कई गुना अधिक कमाई कर पाएंगे और संगम युग के एक एक सेकंड को एक अमूल्य खजाने की तरह से यूज करेंगे। ओम शांति।